परिचय पुस्तक के आधार से उन कर्म और नो कर्म जीव बांधता है, हर समय कर्म का ग्रहण करता है और विग्रह गति के कुछ समय छोड़कर नो कर्म भी हर समय यह जीव ग्रहण करता है, इसकी बात हमने देखी थी। द्रव्य कर्म सतत विग्रह गति में भी द्रव्य कर्म का ग्रहण चालू है, क्योंकि हमने देखा अभी जीव के राग द्वेष परिणाम वहाँ भी होते हैं, चारित्र गुण है तो वहाँ परिणाम उसका भी चल रहा है। तो
एक समय के लिए नहीं होगा,
एक मोड़ वाले को एक समय तक नहीं होगा, दो मोड़ वाले को दो समय तक नहीं और तीन मोड़ वाले को तीन समय तक नहीं। हाँ चालू है, यानी पुराना उसके साथ में जाता है और नया नया ग्रहण भी उसका चालू है, यानी द्रव्य कर्म का ग्रहण कभी एक समय मात्र के लिए भी रुकता नहीं है, वो सतत चालू रहेगा। कब तक? तेरहवे अयोग केवली संयोग केवली गुण स्थान के अंत समय तक वो कर्म का ग्रहण, यानी कर्म आहार जिसको कहते हैं, वो हमेशा चालू रहेगा। और नो कर्म का ग्रहण वो मोड़ वाले विग्रह गति में एक दो या तीन समय तक नहीं होगा, जो सीधा गमन करता है ना बिना मोड़ वाला, उसको तो वो आहारक ही रहता है, यानी उसको एक समय मात्र भी बीच में नो कर्म नहीं ग्रहण किया ऐसा नहीं होता। कोई कोई जीव ऐसे है कि सतत सीधे गति से जाते रहेंगे तो नो कर्म का आहार भी उनका चलता रहेगा। अब ये जो परमाणु ग्रहण करता है उसमें हमने देखा था कि निश्चय किसके किसे कहते हैं, तो परमाणुओं के समूह को, कौन से परमाणुओं का समूह, कि जो एक साथ निकल जाए। जब जीव अनंत कर्म परमाणु या नो कर्म परमाणु बांधता है तो उसमें निश्चय एक रचना होती है। कल हमने देखा था कि कर्म में तो आबाधा काल छोड़कर उसके पश्चात हरेक समय में विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु निकल जाते हैं, उसको कहते हैं निषेक। पहला निषेक में कुछ परमाणु है, दूसरे में और कुछ है, तीसरे में और कुछ है, पहले में सबसे ज्यादा निकल जाते हैं, दूसरे निषेक में थोड़े कम है, तीसरे निषेक में और थोड़े कम है, ऐसे जितनी कर्म की अंतिम स्थिति है उस समय में वो सबसे कम की परमाणु वहाँ होंगे, वो निकल जाएंगे। ये तो अनंत का ही है सारा, क्योंकि मूल में ही अनंत है तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी वो अनंत ही है। और निकलते हैं नहीं, ये निषेक रचना एक समय में बांधे हुए कर्म की बताई हमने। अब ग्रैंड टोटल होगी, किसी का पहला निषेक फिर रहा है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, किसी का लाखवा निषेक फिर रहा है, तो सबकी जो टोटल होगी उतनी एक साथ फिरेगी, वो भी अनंत है और उसका फल भी जो इकट्ठा मिलेगा, जैसे ज्ञानावरण का इकट्ठा मिलेगा, दर्शनावरण का इकट्ठा मिलेगा, साता वेदनी का इकट्ठा मिलेगा, असाता का इकट्ठा, यानी पाप रूप इकट्ठा मिलेगा, पुण्य रूप इकट्ठा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कैंसिल होगा आपको। कल बात आपने पूछी थी, तो ऐसे कैंसिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, वो दोनों उसको भुगतने पड़ेंगे। तो अभी वो निषेक रचना कैसी होती है उसकी बात आज हम करेंगे। पांचवा जो प्रकरण है, प्रकरण पांचवा, पेज नंबर 40, गुजराती में कई पेज छे, 30। तुम्हें पता ही है कि यह लेख माना मैंने सन्मति संदेश पत्रिका में सुनो अपनी कहानी शीर्षक के अंतर्गत शुरू की थी। कल मैंने बताया था कि चिरकाल पुरानी सुनो अपनी कहानी, ऐसा उसका हेडिंग था। पश्चात इसे कुछ अलग ढंग से पुस्तक रूप से लिख रही हूँ। मोना, रीना ने जब पत्रांक चार वाला लेख पढ़ा था, यानी कल वाला जो हमारा, तब उस पर उसकी प्रतिक्रिया उसने लेख के पीछे लिख कर व्यक्त की थी। तेरी जानकारी के लिए तुझे बता रही हूँ, उसने लिखा था, यानी जब मैंने उसको बताया था ये लेख पढ़ने को दिए थे, तो उसके पीछे उसने पेंसिल से कुछ लिख कर उसकी प्रतिक्रिया लिखी थी। आखिरी दो पृष्ठ पढ़कर मन गदगद हो गया। देखिए, इसमें जो कुछ बातें बताई है वो सारी यानी घटी हुई है, या मेरे विचार भी जो है वो एक्चुअल उसमें प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं कि लिखने के लिए या डायलॉग बोलने के लिए ऐसे कुछ लिखा है, तो ये भी जो उसने लिखकर स्वयं लिखकर उसने भेजा था। ऐसे नहीं कि पत्र के लिए मैंने इसमें उसके मुंह में डाल दिए शब्द, ऐसा नहीं। आखिर ये दो पृष्ठ पढ़कर मन गदगद हो गया। तेरे बोझ सदैव इन्हें पढ़ने के कुछ दिन तक तो कानों में गूंजते रहते हैं। अंतःकरण की गहराई से कोई बता रहा है कि तू स्व को पहचान। सभी अनुकूल संयोग, उत्तरोत्तर दुर्लभ बातें प्राप्त हुए हैं। इस भाव में यदि मैंने अपने को न पहचाना तो मेरे जैसा कम नसीब दूसरा कोई नहीं होगा। तेरे लेखों और प्रवचनों के कारण यह रुचि और ये परिणाम कायम रहे और मैं अपने देह को शीघ्र प्राप्त कर लूं, यही मेरी इच्छा है। पुनश्च मुझे जो ये जो विकल्प आ रहे हैं वे आश्रव है और इनका भी मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। ये बराबर उसने उसका मर्म पकड़ लिया। इसे पढ़कर मुझे बहुत समाधान हुआ। शास्त्रों का मर्म तुम सही ढंग से आत्मसात कर रही हो, इसका पता चला। रीना हर इतवार दादा के क्लास यानी प्रवचन में आती है। 7 जून 1998 से लघु जैन सिद्धांत रचिका के 1.5 घंटों के 55 लेक्चर हुए हैं। मोना, तूने ही तो हट किया था कि रिया बड़ी होने पर उसे सिद्धांत प्रवेशिका कौन सिखाएगा। मेरे खर्चे से ये सारे प्रवचन टेप कीजिए। उसके फलस्वरूप टेपिंग करता है। इन कैसेटों पर से 20-25 टेप तैयार होकर अनेकों के पास पहुंच चुके हैं और लोगों की मांग बढ़ रही है। अभी तो कितना उससे दुगुना तिगुना हो गया, बहुत ज्यादा टेप उसके लोगों ने ले लिए। मोना, तेरी जीत की वजह से प्रचार प्रसार में बहुत लाभ हुआ है। मोना, तो हम दोनों को 10-10, 15-15 दिन औरंगाबाद में बुलाकर तेरे घर पर क्लासेस अरेंज करती है, जिससे तुम्हारे साथ अन्य 30-40 लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि तुम दोनों को सचमुच ही स्वाध्याय की रुचि लगी है। इतना ही नहीं, समझाई हुई सभी बातों का मर्म तुम ठीक तरह से आत्मसात कर रही हो, इस बात का मुझे समाधान है। हमने अब तक कर्म नवकर्म का बंध, उसकी स्थिति, उदय काल और निषेक काल आदि बातें समझी। हमने यह भी देखा कि जीव में जो कर्म नवकर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। जीव में कुछ ऐसी पौर है ना, पौर है, कुछ कैपेसिटी है कि वो कर्म को और नौ कर्म को ग्रहण करे। वो क्यों करता है, कैसे करता है, तो ये जो भाव योग है, शक्ति जो है, उसे भाव योग कहते हैं। और एक्चुअल आत्म प्रदेशों का कंपन है उसको द्रव्य योग कहते हैं। हमेशा जब जब हम भाव और द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य हम हमेशा पुद्गल में डालते हैं, जैसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो भाव कर्म तो हुआ जीव का और द्रव्य कर्म हुआ पुद्गल का, वैसे यहाँ नहीं है। यानी द्रव्य योग जीव के आत्म प्रदेशों के एक्चुअल कंपन, एक्चुअल कंपन, और भाव योग यानी उसकी वो शक्ति। यानी द्रव्य योग पुद्गल में नहीं डालना, मसाला है डिफरेंस। हमेशा हम द्रव्य जब शब्द आता है द्रव्य आश्रव द्रव्य बंधन द्रव्य मुक्ति ये सारा हम पुद्गल में डालते हैं, वैसा नहीं यहाँ। ये भाव योग कहते उसका कारण है जीव के प्रदेशों का कंपन होना जिसे द्रव्य योग कहते हैं। जीव कर्म नो कर्म का ग्रहण करता है उनसे कारमान शरीर और नो कर्म शरीर बनते हैं। हमने देखा था ना वो ग्रहण करता है और उस रूप परिणाम आता है। तुमने सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा था कि शरीर पांच प्रकार के हैं, औदारिक वैक्रेय आहारक तेजस और कारमान शरीर। इनमें से पहले चार शरीरों को नौकर्म शरीर कहते हैं। हमने कल देखा ना पांच वर्गणाओं में से कारमान वर्गणा को छोड़कर अन्य वर्गणाओं को नौकर्म वर्गणा कहते हैं। वैसे यहाँ कारमान शरीर को छोड़कर अन्य जो शरीर है उसको नौकर्म शरीर ऐसा कहते हैं। इनमें अपने अपने शरीर नाम कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। अपने अपने शरीर नाम कर्म मैंने क्या अभी हमने देखे थे ना यहाँ कितने शरीर है पांच प्रकार। तो औदारिक शरीर में कौन निमित्त है तो औदारिक शरीर नाम कर्म। वैक्रियक शरीर में कौन निमित्त है वैक्रियक शरीर नाम कर्म उसका उदय। आहारक विद्याधारी मुनि जो आहारक शरीर बनता है उनका तो उसमें कौन निमित्त है तो उनका जो आहारक शरीर नाम कर्म। इसलिए लिखा अपने अपने शरीर नाम कर्म यानी उस नाम का। अभी तेजस शरीर बनता है तो तेजस वर्गना जो ग्रहण करता है तो तेजस वर्गना ग्रहण करने में कौन निमित्त है तो तेजस शरीर नाम कर्म का उदय। वैसे कर्म भी ग्रहण करता है तो विशिष्ट क्यों ग्रहण करता है तो वहाँ भी कारमान शरीर नाम कर्म का उदय। तो इसीलिए लिखा है अपने अपने शरीर नाम कर्म के उदय में वैसे वैसे शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं। कारमान शरीर की तरह ये चार शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। देखो कारमान शरीर के कारण तो जीव में विभाव रूप परिणमन होता है, मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं या जीव के ज्ञान का दर्शन का आदि घात होता है। हमने देखा था घाती कर्म वो जीव के गुणों का घात करते हैं यानी पर्याय में उसकी फुल जो पावर है वो प्रकट नहीं होती। परंतु ये जो अन्य चार शरीर है अभी औदारिक शरीर मिला हो या वैक्रिक शरीर मिला हो वो अपने कौन से गुण का घात करते हैं। हाँ दीपाली औदारिक शरीर जीव के कौन से हा? नहीं नहीं अभी जो शरीर है तो शरीर आपको कुछ करवाता है कि राग द्वेष मोह। हाँ जीव क्यों क्यों किसमें जुड़कर वो कारमान के उदय में। औदारिक शरीर का यहाँ कुछ चल रहा है परमाणु छोड़ रहे हैं या आ रहे हैं उसके कारण उसको कोई उसको फल नहीं है यानी जीव के गुणों का घात नहीं हो रहा। मोह भी जो है वो शरीर के कारण नहीं है वहाँ जो मिथ्यात्व या दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी का उदय है तो कारमान शरीर के कारण यानी कर्म के उदय के कारण वहाँ जीव के मोह राग द्वेष यानी उसके कारण उसके ज्ञानावरण दर्शनावरण ये जो है ना वो सारे कर्म घाती कर्म उसके कारण जीव के गुणों का घात हो रहा है। वैसे औदारिक शरीर हो वैक्रिक शरीर हो या अन्य कोई शरीर हो उसके कारण जीव के कोई गुण का घात नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या कहा कर्म शरीर के कारण उसके जीवों के गुणों का घात हो रहा है परंतु नौकर्म शरीर के उदय के कारण या उसके रहने के कारण जीव के किसी भी गुणों पर आवरण या ऐसा कुछ बाधा नहीं है या विपरीतता नहीं है यानी शरीर जीव को कुछ भी नहीं करता। जैसे कर्म के उदय में वो निमित्त बनता है जीव के मोहरांग देश में वैसे शरीर जीव में वो नहीं बनता वो नो कर्म है। ऐसा हो सकता है कि अभी किसी मोह का तीव्र उदय हो और जाना कर शरीर हो तो जीव उसको अगर देख देख कर गुस्सा होगा दुखी होगा या कुछ ऐसा परंतु उसके कारण वो नहीं हो रहा है वो मूल वह कर्म है। वो किसी को मोह मंद होगा अभी वो ऊपर के गुणस्थानों में जाए श्रेणी में हो या वितराग भगवान भी हो गए। वहाँ तो ऐसा है ना, छह संस्थानों का उदय होता है। संस्थान नाम सुना है ना, शरीर के आकार कैसे अलग अलग आकार होते हैं, जैसे समय चतुरस्त्र संसार प्रोपोर्शनेट बॉडी, या नवरोध परिमंडल ऊपर बड़ा नीचे छोटा, या स्वाति ऊपर छोटा नीचे बड़ा। नवरोध परिमंडल अभी देखा ना, समय चतुरस्त्र संस्थान, नवरोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक, ऐसे अलग अलग संस्थान है। कोई भी आकार के हो, संस्थान कैसा भी हो, फिर भी उसको पूर्ण वितराग का अर्यंत पद भी प्राप्त हो सकता है। क्या पूछना है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, छह संस्थान, सहनन एक ही होता है। वज्र वृषम नाराज सहनन के बिना कोई उसी भाव में यानी कपक श्रेणी नहीं मान सकेगा। शंकर की तो बात ही नहीं, कोई भी जो मोक्ष में जाने वाला है उसको वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होगा, अन्य सहनन नहीं होगा। बारहवें में भी नहीं जाएगा वो, बारहवें में जाने वाला ही ऊपर जाता है, परंतु वो अन्य जो नीचे के दो सहनन है उसके साथ तो वो ग्यारहवें तक उपशम श्रेणी तो चल सकता है, शपक श्रेणी नहीं चलता है। ऐसे ऐसे कर्णान योग के नियम है। ऐसा क्यों? तो ऐसा ही सहज निमित्त निमित्त, उसके कारण वो नहीं जाता। वज्रषम नारा सहनन के कारण यदि उसको शपक श्रेणी मान सकता ऐसा होता तो वज्रषम नारा सहनन वाला सातवें नरक में भी जाता है। ऐसा नियम है कि सातवें में जाने वाला भी वज्रषम नारा सहनन वाला ही होगा, तीन सहनन वाला सातवें नरक में भी नहीं जाएगा। ऐसे सहज निमित्त निमित्त संबंध का कथन शास्त्र में आता है। उसने उसको मोक्ष में पहुंचाया या सहन नहीं था इसलिए जिन्हें पुरुषार्थ नहीं किया, इसी पराधीनता नहीं है। परंतु शरीर का जो कोई शेप होगा उसके कारण उसका मोक्ष नहीं रुकता है। हमने देखा था कि देवे गुणस्थान में जो जो उदय रूप प्रकृतियां हैं उसने तो छह संस्थान लिए परंतु सहनन तो एक ही लिया है। देखो कारमान शरीर नीचे से तीसरा करेगा, कारमान शरीर की तरह ये चार शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, गति आदि रूप पराधीन भी नहीं बनाते। देखो ये गति मिलना, किसी कोई विशिष्ट आयु मिलना, ये पराधीनता है। जैसे अभी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ तो हम देवों में पहुंचेंगे, मनुष्य वो मिला तो मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। उसके अपने मनुष्य भाव के अनुसार यानी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा। ऐसे अलग अलग उसके साथ मनुष्य के साथ जो जो पॉसिबल है उसके साथ लगती हुई ऐसी सारी कर्म प्रकृतियों का वहाँ उदय होगा। वहाँ एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय जाति का उदय नहीं होगा, पंचेंद्रिय जाति का उदय होगा। वहाँ त्रस नाम कर्म का उदय होगा, स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं होगा। तो उसके साथ जो जो पॉसिबल है वैसे वैसे सारे कर्मों का उदय होगा। तो यहाँ पराधीन बना दी ना कर्म। अभी ये निमित्त का कथन है, जीव स्वयं अपने योग्यता से विशिष्ट गति में गमन करता है तब क्या कहेंगे वहाँ गति नाम कर्म का उदय था। इसे निमित्त की भाषा में जब जब हम बोलते हैं तब हमने क्या कहा कि गति आदि रूप पराधीन भी नहीं बनाते। कौन? ये शरीर। क्योंकि जीव जब यहाँ आया मरकर तो उसके पास कोई शरीर था ही नहीं ना, तेजस और कारमान था, औदारिक शरीर तो यहाँ आकर उसने ग्रहण किया। इसलिए उन्हें नौ कर्म, अकर्म अथवा ईषत कर्म कहते हैं। नौ कर्म कहने जैसे हमने नौ कषाय कहा था वैसे ये नौ कर्म है। और एक नौ वाला शब्द आता है, याद है दीपाली? जैसे नौ कषाय, नौ कर्म, ऐसे नौ वाला और एक शब्द आता है। नौ इंद्रिय, मन को नौ इंद्रिय कहते हैं। जैसे ये पांच इंद्रिय और मन, नौ इंद्रिय। कारवाण शरीर नाम कर्म के उदय में आठ कर्मों का स्कंध होता है, वही कारवाण शरीर है। आठ कर्म इकट्ठे जीव के प्रदेशों में आकर जुड़ते हैं और जो उसका स्कंध है उसी को कारवाण शरीर कहते हैं। कर्म और नौ कर्म की अधिक से अधिक यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनती है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो हमें तो कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तो मालूम है, तेजस शरीर आदि में भी उत्कृष्ट स्थिति होती है, औदारिक शरीर में भी उत्कृष्ट स्थिति होगी, आहार शरीर की भी उत्कृष्ट स्थिति होगी, तो वो कितनी है उसकी अब चर्चा करते हैं। प्रत्येक जीव को हर समय इतनी स्थिति बंधेगी ऐसा नियम नहीं है। जब हम दर्शन होने का कहते हैं सत्तर कोड़ा कोड़ी को, तो हर समय इसकी स्थिति नहीं बनती उसको। जैसे अभी जो करण लब्धि में चला है और कुछ समयों के बाद जिसको सम्यक तो प्राप्त होना है उसकी तो कितनी जघन्य स्थिति बन जाएगी अंतर्मूर्त वाली, और जो तीव्र मिथ्याती है उसको सत्तर कोड़ा कोड़ी वाली, यानी उसके जो जैसे परिणाम हो गए दिन भर में हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे वैसे ये आठों कर्मों की स्थिति भी कम अधिक होती है। हमने देखा था कि स्थिति काहे से बनती है दीपाली, स्थिति में कौन निमित्त है कषाय, तो हमारे कषाय भी मंद कभी तीव्र होते हैं उसके अनुसार कर्मों में स्थिति भी कभी कम कभी कभी ज्यादा पड़ती है। इसलिए यहाँ जो हम स्थिति लिखेंगे वो उत्कृष्ट स्थिति, अधिक से अधिक कितना बांध सकता है उसकी बात यहाँ है। ऊपर बताए हुए पांचों शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है उसे समय प्रबद्ध कहते हैं, यानी औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध अलग होगा, तेजस शरीर का भी समय प्रबद्ध अपना अपना होगा, कारमान शरीर का समय प्रबद्ध अपना अपना होगा, यानी जितने कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं उसको कहेंगे वो कारमान वाला समय प्रबद्ध। औदारिक शरीर के कितने परमाणु हमने एक साथ ग्रहण किए एक समय में उसको कहेंगे औदारिक वाला समय प्रबद्ध। ऐसे हरेक शरीर का अलग अलग समय प्रबद्ध अपना अपना होगा। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य कौन कौन से करेगा, औदारिक तेजस और कारमान। अब जो भावलिंगी मुनि जो रिद्धिधारी है और जो आहार शरीर बनाने वाले हैं अभी वो आहार के ग्रहण करेंगे। औदारिक औदारिक हर समय नहीं, अभी औदारिक शरीर के परमाणु की कितनी ग्रहण करेगा, जितनी अपने प्रेजेंट लाइफ अभी रहेगी उतनी। तेजस शरीर की तो अन्य भाव में भी साथ में जाता है ना, तो उसकी स्थिति ज्यादा है। अन्य भी मन बनवाने मन वाने उपवास इसके परमाणु तो नहीं जाएंगे सारे, अकेले तेजस वाले वो भी इसी भाव के लिए। हाँ औदारिक नहीं उसमें ले लेंगे। अभी यहाँ तो शरीरों की बात करें ना, औदारिक शरीर की बात करें। अभी जो वो औदारिक शरीर की आहार वर्गना ग्रहण करेगा, फिर मनोवर्गना ग्रहण करेगा, भाषा वर्गना ग्रहण करेगा, तेजस वर्गना ग्रहण करेगा। अभी हम बात तो पांच शरीरों की कर रहे हैं, पांच वर्गनाओं की नहीं कर रहे। डिफरेंस ख्याल में है ना, आहार वर्गना में ये तीनों ही शरीर आ गए, औदारिक वैक्रियक और आहार। तो वर्गना की बात हम करेंगे तो हम खाली कहेंगे वो आहार वर्गना ग्रहण कर रहा है, वैक्रियक शरीर के परमाणु को भी आहार वर्गना कहते हैं, औदारिक शरीर के परमाणु जो गठा है उसका समूह है उसको भी आहार वर्गना कहेंगे, और आहार कृतधारी मुनियों के जो है उसको भी आहार वर्गना कहेंगे। वर्गना एक, उसमें से ये तीन अलग अलग शरीर बनते हैं। ऑफकोर्स उसमें डिफरेंस है, वो उद्गल एक जाति के नहीं, उसमें थोड़ा बहुत जैसे वैकिरिक शरीर वाले परमाणु सूक्ष्म है और औदारिक वाले वो स्थूल है, ऐसा डिफरेंस उसमें है। एक उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है, उसकी संख्या भी भिन्न है, उसकी स्थिति भी भिन्न है। हिंदुवे हरेक का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है, अनंत हो गए तो फिर वो उस अनंत में भी कुछ डिफरेंस है, किसी के परमाणु ज्यादा आता है, किसी के कम। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है, यानी सबसे कम परमाणु यह औदारिक शरीर संबंधी होगी, उसका समय प्रबद्ध कम है। और क्रम से उत्तर उत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शरीर सूक्ष्म है, शरीर सूक्ष्म है तो परमाणु अधिक है। जैसे ये शरीर स्थूल है तो इसमें परमाणु कम है, और कारमान शरीर इतना सूक्ष्म है तो उसमें बहुत अधिक परमाणु है। इतने अधिक है फिर भी दिखना है, उसका सूक्ष्म परिणाम है। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। उत्तरोत्तर ने अभी हमने कैसे देखा, पहले किसको लिखा था, औदारिक, उससे वैकिरिक में सूक्ष्म है परंतु परमाणु अधिक। आहार उससे सूक्ष्म परंतु परमाणु उससे अधिक। तेजस उससे भी सूक्ष्म और कारमान सबसे सूक्ष्म। औदारिक शरीर स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि वह स्थूल शरीर है। अब तेजस शरीर, यहाँ तो अनुमान से लेना कि स्पर्शन इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय द्वारा जाना जाता है। हम देखते नहीं है गर्म हुआ ऐसे शरीर की कांति जो दिखने में आती उसकी अपेक्षा, परंतु ऐसा तेजस शरीर नहीं दिखता। ले कोई मर कर जा रहा है तो हम नहीं कह सकते चलो इसका ये तेजस शरीर जा रहा है। हाँ निकल जाता है, मगर जाते हुए जीव नहीं दिखता ना। वो साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते ना कांच की बंद पेटी में, अभी जो मरने आया है अभी बिल्कुल कांच टूटी है, क्या है, कैसे जीव निकल जाता होगा, इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए एक्सपेरिमेंट। तो कांच को बिना तोड़े वो चला जाता है तो उसको पता नहीं चलता ये कैसे, यानी उसका अभी उनको कोई सॉल्यूशन कोई उत्तर मिला नहीं है। तो हम तो केवल ज्ञान नहीं के ज्ञान से हमको ये सारी बातें पता है कि वो वहाँ उसका सूक्ष्म, जैसे लाइट जो है वो कांच के आर पार चला जाता है बिना कांच को तोड़े, रहता है ना अभी अंदर लाइट आ रहा है तो वहाँ तो कांच है इंटैक्ट है फिर भी अंदर लाइट आ सकता है, तो उसका सूक्ष्म परिणाम। वैसे ये तेजस कारमान के सूक्ष्म परिणाम है, वो आर पार चला जाता है। सबसे सूक्ष्म इसलिए सिद्ध होता है कि वह औदारिक शरीर से सूक्ष्म है। तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक है, उससे भी अनंत गुना परमाणु कारमान शरीर में होते हैं। फिर भी वह किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जाता, इसलिए कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। यानी इस पर हम अनुमान लगाते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है तो वो स्थूल है, और जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है वो सूक्ष्म है। मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है, इसलिए सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य तिर्यंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। तो वो कौन है सबसे अधिक आयु वाला जीव मनुष्य और तिर्यंचों में? सबसे अधिक आयु किसके होती है? उत्तम भूमि में कितनी होती है? तीन पल्ले। जघन्य मध्यम में दो पल्ले, जघन्य में एक पल्ले। और कर्म भूमि में अधिक से अधिक कितनी होगी? एक करोड़ पूर्व। अभी हमने विदेश क्षेत्र में या यहाँ चौथे काल में, अपने यहाँ चौथे काल में एक करोड़ पूर्व की आयु अधिक से अधिक हो सकती है। भोग भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है, इसलिए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले है। हम तो मैक्सिमम वाले को बताते, जैसे दर्शन मुनि के हम 70 कोड़ी सागर कहते हैं, वो अधिक से अधिक की उत्कृष्ट लिमिट बताए। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, इसलिए वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 33 सागर। एक ख्याल में है ना उत्कृष्ट स्थिति यानी क्या? क्योंकि जो उन्होंने पहले समय में कुछ परमाणु ग्रहण किए, हमने देखा था उसमें से कुछ निकलते 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 अंतिम समय में उसकी लास्ट बैच चली जाती, तो उसकी स्थिति कितनी है? वो जो 33 सागर, तो वे ही सेम परमाणु वही रहे उस जीव के साथ। समझो 1 लाख साल के बाद उन्होंने कुछ बांधे, तो उसकी स्थिति कितनी रहेगी? वो 33 सागर में से 1 लाख कम कर दो तो बची हुई इतनी स्थिति, तो उसमें से कुछ परमाणु निकलते निकलते अंतिम जो गठा है उसका परमाणु का, वो अंत समय में निकल जाएगा। कल हमने देखा ना गलित अवशेष आयु जितनी नौ कर्म की स्थिति होती है, शरीर के परमाणुओं की स्थिति होती है, अभी जितनी बची आयु है उतनी उतनी अधिक स्थिति वाला वहाँ नौकर्म वहाँ बनता है, यानी वो सारा निश्चित है कि नहीं? आयु निश्चित है, इसलिए जो जो नौकर्म भी बांधता है उसकी भी स्थिति निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि आयु लंबी बची है और नौकर्म सब निकल गए छूट गए, ऐसा कभी नहीं होगा। या नौकर्म की स्थिति बची है और अभी आयु नहीं क्या करे, ऐसा भी कभी नहीं होगा। आहारक शरीर की स्थिति अंतर्मुहूर्त है, उसका कारण कह सकोगी? आहारक शरीर की परिभाषा याद करो, मुनि जब छठवें गुणस्थान में होते हैं तब इस शरीर की रचना होती है। छठवां गुणस्थान है अंतर्मुहूर्त का, अर्थात एक अंतर्मुहूर्त के भीतर आहारक शरीर का बनना, जिनालय आदि की वंदना या तीर्थंकर के निकट जाकर वापस लौटाना और उसके परमाणुओं का फिर जाना आदि सभी बातें होती है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है, ये तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति। अनेक भवन तक उसका उदय काल चलता रहता है, अभी बांधा है तो उसका उदय काल भी यानी उसका छूट जाना भी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने कोई तेजस शरीर बांधा है तो अधिक से अधिक कितना रहेगा? 66 साल, उसमें तो कितने भोग हो जाएंगे, और फिर नया नया भी बांध रहा है। हाँ तो उस समय वो 66 सागर वाले ही बांधेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर समय तेजस बांध रहा है और हर समय तेजस का उदय भी चल रहा है, तो अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा वो तेजस अभी बांधा है किसी ने? तेजस के परमाणु बांधे उसी समय उसका छूटना भी चालू हो गया, तो किसी ने वो 66 सागर वाले उत्कृष्ट बांधे। हो सकता है अन्य कभी उसने बहुत कम बांधे और अन्य समय में और इतने बांधे, तो किसी विशिष्ट समय में ये सबकी टोटल होगी, यहाँ कितने यहाँ कितने यहाँ कितने, इतने का उदय चल रहा है। परंतु एक समय में बांधे हुए अधिक से अधिक कितने हैं? 66 सागर। जैसे हम देखते हैं ना दर्शन मुनि एक समय में बांधा हुआ, कितने काल तक उसका उदय होता रहेगा? 70 कोड़ी सागर। तो फिर वो उसी के साथ देव में भी जाएगा, फिर मनुष्य में भी आएगा और कहाँ कहाँ चला जाएगा, नरक में नरोध में कहीं भी, वो एक समय वाला उसका भी चल रहा है। उसके साथ अन्य अन्य भी है अलग अलग समयों में बंधे हुए, जिन जिन का उदय एक साथ होता है, एक समय में बंधे हुए की बात है। क्योंकि एक इतना ही वो उसको काफी नहीं है, वो हर समय बांध भी रहा है और हर समय छोड़ भी रहा है। कभी कम स्थिति वाला बांधेगा, कभी ज्यादा वाला बांधेगा। कारमान शरीर की सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति, देखो जब अकेले कारमान शरीर की उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे तो वो मैक्सिमम वाला ही बताएंगे, यानी 8 कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति वह कितनी है कारमान शरीर की? तो 70 कोड़ी सागर। और अकेले एक एक कर्म का नाम लेकर बताएंगे तो अलग की हर एक की अलग अलग, इसीलिए सामान्यतः लिखा। उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। विशेष अपेक्षा देखने पर यानी हरेक का अलग अलग देखेंगे तो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। इनको तिथीय कर्म भी कहते हैं। उसमें आबादा काल 3000 वर्षों का होगा, वह शेष उदय काल बचा हुआ है, वो हर समय में उदय में आते रहेंगे। मोहनीय कर्म की 70 कोड़ाकोड़ी सागर, अभी मोहनीय को अकेला कहेंगे तो 70 कोड़ा, यदि उसमें हम मोहन दर्शन मोहनीय अलग निकाले, चारित्र मोहनीय, तो फिर चारित्र मोहनीय के हम 40 अलग अलग बताएंगे। नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ाकोड़ी सागर और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। इनमें से आयु कर्म का उदय काल एक भव तक सीमित होता है, 8 कर्मों में, बाकी कर्म तो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। आयु कर्म यहाँ का यहीं पर गिर गया, अगले ही समय में नई आयु का उदय हो गया, नया जो आयु कर्म बांधा है उसने उसका उदय चालू हो जाता है। इसलिए आयु कर्म का उदय एक भव तक ही सीमित है, वो इस भव की आयु अगले भव में नहीं जाती, नहीं अभी बांधेगा। अभी समझे यहाँ से देव होने वाला है तो देव की आयु इसी भव में बांधी, देव हुआ वहाँ सागरों का जीवन बिताया और फिर अंत 6 महीने रह गए, तब वो उसके आगामी आयु बांधेगा। हाँ 6 महीने में फिर उसके विवाह पड़ेंगे, यानी पहला ओकेजन उसको 6 महीने पहले आएगा, फिर उसमें भी 8 अवसर आते हैं। तो उदय काल अनेक भवन तक कायम रह सके, यानी अन्य जो कर्म जो है जैसे साता वेदनीय है, असाता वेदनीय है, किसी को तीव्र दुसरू कुछ ऐसे मिलते ऐसे ही हो या तीव्र शोक है, तो ये जो कर्म का उदय में लेना, जीव के भावों की बात नहीं चल रही थी, कर्मों के उदय में, तो उसका उदय अगले समय में अगले भव में भी चलता रहेगा। क्या होता है कि जीव इस संयोगों से डर जाता है या किसी को मान कषाय या तीव्र क्रोध कषाय हो जाता है तो क्या करता है, आत्मघात कर लेता है। वो क्या मानता है कि यहाँ मरण होने से मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, परंतु आयु तो समाप्त हुई और बाकी कर्म साथ में जाएंगे, तो साथ में जाएंगे तो अगले भव में वो भोगना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यानी ये उसको पता नहीं है कि इस आयु का तो अंत कर दिया उसने, परंतु कर्म का उदय तो अभी चलेगा निरंतर उसके, जिसके असाता वेदनी उसके असाता वहाँ भी चलेगी। हम देखते हैं ना कोई कोई बच्चे जन्म से कितने रोगी होते हैं, कॉन्जेनिटल डिसीजेस होते हैं, किसी को जन्म से वो हार्ट की बीमारियां या कुछ कुछ ऐसे चलता रहता है, तो हो सकता है इसे या कोई यहाँ से जाके निरस में जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जन्म से लेकर ही सारा दुख ही दुख है। ऐसे होते हैं कि बहुतों के जो आत्मघात करने वाले वो तो नरकों में या ऐसे ही जाति के देवों में ऐसे पैदा हो जाते हैं, देवों में भी ऐसे नहीं जाते हैं परंतु नरकों में खास करके, क्योंकि वो अशुभ तीव्र अशुभ लेशन में मरते हैं। हो सकता है कि कोई अपघात एक्सीडेंट से मरे इसलिए वहां जाएगा, ऐसा नहीं, एक्सीडेंट से भी मरा मगर उस समय अगर उसके परिणाम ठीक है तो हो सकता है वो स्वर्ग में जाए, परंतु वो स्वयं आत्मघात करे तो वो परिणाम उसके तीव्र अशुभ है तो वो नरक में जाए। तो वैसे उसके परिणाम भी वैसे हो जाते हैं, ये सारा आपस में मेल है। मनुष्य में कल हमने बात कही ना, 1/3 जब आयु बचती है तब वो बनता है, तब नहीं बनता तो और 1/3 बचेगी तो उस समय बनेगी। ऐसे अभी वो आयु भी कहाँ से गिननी है, विग्रह गति में से वो पहले जब आहारक बना ना, वो नौ कर्म आहार ग्रहण किया तब से वो नापनी, अभी एक एक समय का कहाँ हिसाब लगाएंगे, और हम क्यों बदलना चाहते परिणाम, अच्छे कुछ भव मिले, भव में क्या अच्छा और बुरा, भव ही नहीं मिले ऐसी कुछ परिणाम करो तो ठीक है। हम क्या करना चाहते थे, ये अभिप्राय में कहाँ पड़ा है अपने, हम क्या करना चाहते, परिणाम सुधार कर अच्छा भव लाना चाहते हैं। मतलब इतने परिणाम सुधारो कि भव ही नहीं मिले, ये तो अपने हाथ की बात है ना। अभी ठीक है कि समय दर्शन हुआ तो भी भव तो अभी मिलेगा अगला, क्योंकि अभी कुछ भव तो चलते रहेंगे। तो भव का अभाव करने का जो, यानी समय दर्शन प्राप्त करने से भव का अभाव होगा, तो उसी के परिणाम करो ना। परिणाम आपके हाथ में है ना, या हम भावना भी करते हैं या उपदेश भी देते हैं कि ऐसे ठीक परिणाम करो, तो ऐसे ही परिणाम करो कि जिससे समय दर्शन हो जाए, जिससे और ऊपर का गुण स्थान मिल जाए। अकेले भव की प्राप्ति के लिए क्यों परिणाम सुधारना चाहते हैं, है ना। इस पर से एक बात सहज समझ में आ सकती है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर कुछ लोग आत्मघात कर लेते हैं, या दीर्घ रोग से पीड़ित मनुष्य को दया मरण देने का अपना मत प्रदर्शित करते हैं। ये जानवर जो होते हैं, ये रेस के घोड़े आदि, कुछ बीमारी हो जाए कुछ तो उनको शूट कर देते क्या, क्योंकि उनकी वो तकलीफ हमको देखी नहीं जा सके, या कोई बहुत तीव्र वेदना से पीड़ित मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, तो अनेकों का क्या होता है, नहीं मर्सी के लिए उनको मारना चाहिए क्योंकि उनको दुख उनका हम कम करेंगे। कोई जीवन मरना नहीं चाहता है, कितने भी दुखी क्यों ना हो, जीव तो बचना ही चाहता है, मगर ये दूसरा उसको मार कर ये सुखी होगा ऐसा मानता है। ये सारी यानी वो भी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है, मारने वाले की भी और जो चाहेगा नहीं मुझे मरण चाहिए उसकी भी, आत्मघात भी हिंसा है। तब वे एक बात भूल जाते हैं कि कर्म का उदय तो अगले भव में भी रहने वाला है। आयु कर्म के शेष सब निषेध एक साथ उदीर्ण न होकर कदलीघात होकर जीव विषभक्षण शस्त्रघात आदि से मर गया तो भी उसके असात आवेदनीय का उदय तो अगले भव में भी चलता ही रहेगा। यानी जब समझो आयु शेष है उसकी 60 साल की आयु है, अभी कोई अभी परीक्षा में फेल हो गया तो 20वें साल में ही उसने आत्मघात किया, तो ये सारे आयु के परमाणु का क्या होगा, तो वो एक साथ उदय में आ जाते, तो उसको कहते हैं कदली घात। और ये पॉसिबल है तीरियंच और मनुष्यों में ही, और वो भी कर्मभूमि के भोग भूमि में ऐसा आत्मघात कोई करता भी नहीं है और वहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। असंख्यात वर्षों की जितनी आयु है जिनकी भोग भूमि वाले है, देव है, नारकी है, उनको फुल आयु भोगनी ही पड़ती है। मनुष्यों में और तीरियंशों में, कर्मभूमि के मनुष्य तीरियंशों में ऐसा होता है कि किसी को बहुत तीव्र रोग आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या विषभक्षण करे या अन्य अन्य अनेक कारणों से वो सारे के आयु के परमाणु एक साथ उदय में आकर खिल जाते हैं और उसका देहांत हो जाता है। और ये भी बाय चांस नहीं होता, उसने जब आयु बांधी होती है तो विशिष्ट परिणामों के साथ बांधी हुई, तो उसका भी ऐसा कदलीघात से मरण हो सकता है। इतना कि 1 करोड़ पूर्व की भी जिसने आयु बांधी हो वो जन्म के बाद अंतर्मुहूर्त में मर सकता है, इतने सारे परमाणु एक साथ छूट कर निकल जाते हैं और फिर उस आगामी भाव में चला जाता है। थोड़ा को बाकी सारे ही कर्म अभी हम नाम कर्म बांधा वो जैसे उसके परिणाम होंगे, जैसी आयु बांधेगी तो वैसे वैसे वहाँ भी उदय में उस पर चलेगा। अकेले आयु ही नहीं, अभी किसी ने मनुष्य आयु बांधी है और उसको ऐसा क्यों, ऐसा कुरूप है, काला क्यों है, वो ठीना क्यों है, उसके ऐसे हीन सहनन क्यों है। हाँ, वो एक समय में बांधा, एक जन्म में नहीं, एक समय में। एक समय में जिसकी जिसकी स्थिति पूरी होने वाली है वो सारा एक साथ उदय में आए। उदय में आने वाला जो एक एक अलग अलग होगा ना, उदय में आने वाले जो स्पर्श को जो है, वो जो कुछ उसके अविभाग प्रतिच्छेद है उस हिसाब से वो उदय में आए। अभी जो मनुष्य है तो मनुष्य में होते वो वैग्रह शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा। हाँ, तो जिस गति में जाएगा, जिस पर्याय में जाएगा, वैसे वैसे उसको जो पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं, उसी उसी ना, बाकी तो पड़े रहेगी अंदर, उसी उसी का उदय उस समय होगा। हाँ, सत्ता में रहते। अभी जैसे हमारा अभी हमने चलता ही रहेगा नाम कर्म में, उसमें किसी का उदय होगा किसी का नहीं होगा, उसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये डिटेल्स तो इसमें बहुत है, मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना यहाँ। ये इतना ही खाली स्थूल हम बात अभी ले लेंगे। 43 पेज पर मिथ्यात्व के कारण और तीव्र कषायों के वश होकर जीव सारा सार विचार शक्ति खो देता है और आत्मघात जैसे प्रयत्नों में अति संकलेश परिणाम करके नरक गति में गमन करता है। कर्म नौकर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है उसमें पहले समय में खिलने वाले निषेक से दूसरे समय में खिलने वाले निषेक में द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी पहले समय वाले किरने में वो ज्यादा है, फिर कलम मिलेगा ना, क्रम से कमती 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 होती है, अंतिम निषेक तक यह संख्या क्रम से हीन होती जाती है। उसका संपूर्ण गणित तो बहुत विस्तृत और थोड़ा कठिन है, इसलिए समझने के लिए काल्पनिक संख्या में इस निषेक रचना का गणित समझेंगे। ये जो गणित की बातें बहुत लोगों ने नहीं समझी है तो अभी हम इसको समझेंगे। इसमें कुछ नए पारिभाषिक शब्द है। भविष्य में यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान चंद्री का गोमटसार ग्रंथ की टीका पढ़ने का मन होगा तो ये शब्दार्थ कार्यकारी होंगे। इसमें एक शब्द है गुणहानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि। यानी हमने देखा था ना, परमाणु की संख्या कम हुई और कम हुई, समझो मान लो 10-10 से कम की हुई, तो पहले 100 थी, फिर 10 कम हुई, फिर और 10 कम हुई, और 10 कम हुई, और 10 कम हुई, जब 50 हो गई तो क्या हुआ, हाफ हो गए ना। तो इन मल्टीप्लीकेशन यानी दो गुना हीन हो गई, उसको कहते हैं दो गुना घाटी यानी हाफ। दो से उसको डिवाइड किया तो 50 आया, तो जब 100 से वो 50 हुए तब एक गुना हानि हुई, उतनी हीनता हुई, आधा हुआ। फिर उससे और एक आधा हुआ तो दूसरी गुणहानि हुई, उससे आधा हुआ तीसरी गुणहानि हुई। तो ये गुणहानि शब्द है। ये सारा फिर हम चार्ट के द्वारा समझेंगे ना। गुणहानि से जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि, क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है तब उसे गुणहानि या एक गुणहानि कहते हैं। एक गुणहानि होने में जो काल लगता है या जितने समय लगते हैं उसे गुणहानि आयाम कहते हैं। देखो, पहले समय में कुछ परमाणु गिरे, दूसरे में थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम, ऐसा यहाँ पर आधे हो गए, यहाँ जितने थे उससे आधे यहाँ पर हो गए। तो कितने समय में ये कार्य हुआ, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 समय में हुआ। तो ये इसकी लंबाई है, इसको कहते हैं आयाम। आयाम यानी लंबाई, तो ये किसकी लंबाई, तो गुणहानि की लंबाई, यानी गुणहानि होने में कितने समय लगे, तो उसको कहते हैं गुणहानि आयाम। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है। हमने देखा था कि निषेकों के परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर हीन होती जाती है और स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक छिरता है। उदय काल के पहले समय से अंतिम समय तक निषेक रचना में कितनी बार गुणहानि होती है, अर्थात परमाणुओं की संख्या आधी, उससे आधी, उससे भी आधी कितनी बार होती है, उसे नाना गुणहानि कहते हैं। देखो ये एक बार ये पूरी स्थिति इतनी है, यहाँ से उदय प्रारंभ हुआ, उदय समय में जितने उसके परमाणु थे वो आधे हुए, समझो यहाँ पर आधे हुए, तो हमने उसको एक गुणहानि कहा। फिर इससे भी आधे हुए, फिर इससे भी आधे हुए, इससे भी आधे हुए, ऐसे करते करते दो तीन चार पाँच छः, तो छह बार आधे हुए तो हमने उसको छह गुणहानि कहे। पूरी स्थिति में कितनी बार वो आधी 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 हुई, तो छह बार गुणहानि हुई, तो उसको कहते हैं नाना गुणहानि, यानी गुणहानियों का प्रमाण। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, समझो छह बार हुए तो नाना गुणहानि है उसकी छह। कन्या है गुणहानि होना यानी परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए, गुणहानि आयाम यानी कितने समयों में ये आधा हुआ प्रमाण, उसको कहते हैं गुणहानि आयाम। अब एक गुणहानि दो बार, तीन बार, चार बार, छह बार हुए
तो
हाँ नहीं नहीं फर्स्ट क्या, समझो यहाँ 512 है तो यहाँ 256 हुआ, फिर इससे आधा 128 हुआ, फिर इससे आधा, इसे इसे आधा 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 मान लो किसी कर्म का उदय काल 48 समयों का है। अब ये 48 समयों पर घटाएंगे, मूल में तो सागरों की होती है, तो ये समझने के लिए हमने छोटी संख्याएं लेकर समझना चाहते हैं। यदि 8 समयों में एक गुणहानि होगी तो 48 समयों में कितनी होगी दीपाली? देखो 48 समय है टोटल 48, तो 8 में एक हुआ, 16वें समय में दो हुए, तो ऐसे कितने हो गए 6, 48 / 8, तो नाना गुणहानि कितनी होगी 6, नाना गुणहानि की संख्या 6 होगी, इसमें गुणहानि आयाम 8 होगा। कर्म के स्थिति में से आबाधा काल छोड़कर जो शेष रहती है वह अवशेष स्थिति या उदय काल है, उसी को अवशेष स्थिति भी कहेंगे या उदय काल भी कहेंगे। अभी हमने तीन शब्द देखे, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि, इसका अर्थ ख्याल में आया? तो अभी हम आगे बढ़े, जब हम दो गुणहानि कहेंगे तो उसका अर्थ होगा गुणहानि आयाम को दो गुना करना, अर्थात 8 × 2 = 16। जब हम दो गुणहानि से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कहेंगे तो वहाँ हम 16 से उसको करेंगे। हमने नाना गुणहानि का प्रमाण 6 देखा था। अब अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण निकालने के लिए ये एक विशिष्ट उसकी संख्या है, उसका कोई मीनिंग मीनिंग नहीं। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि कैसे निकालना, तो नाना गुणहानि है 6। अब इसमें से अब अन्योन्याभ्यस्त का प्रमाण निकालने के लिए उतनी बार यानी 6 बार दो संख्या लिखना, ये नाना गुणहानि 6 है तो 6 बार दो लिखो। और मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64। तो ये जो दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करना, ये 64 आया, वो अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण हुआ। हमें क्या निकालना है अब ये सारा है ना कि कितने परमाणु आते हैं और पहले समय में कितने फिरेंगे इसका तो प्रमाण निकालना है ना। डायरेक्ट 512 कैसे बोल दिया तो कितने में से 512 फिरेंगे तो इसका सारा हम टोटल वो हिसाब बराबर लगाएंगे। पहले निषेक से अंतिम निषेक तक के सभी परमाणुओं की संख्या अर्थात एक समय में बांधे हुए विवक्षित कर्म परमाणु की संख्या सर्वधन यानी टोटल कहलाती है। हम सर्वधन 6300 मानेंगे। अब मान लो एक समय प्रबद्ध में उसने 6300 परमाणु बांधे, वो बांधता तो अनंत है परंतु अनंत का हिसाब हमारे ख्याल में नहीं आता, इसलिए समझने के लिए यहाँ 6300 कर्म परमाणु उसने ग्रहण किए ऐसा मानेंगे। अब उसमें से पहले समय में कितने निकलेंगे दूसरे ये सारा हिसाब अभी बताएंगे। तो सर्वधन का अर्थ होता है टोटल, तो टोटल 6300 उसने ग्रहण किए परमाणु। अब उसमें नीचे की रचना होकर पहले समय में इतने फिरेंगे दूसरे में इतने फिरेंगे ऐसा सारा हम हिसाब निकालेंगे। बांधे एक समय में निकलेंगे अलग अलग समय में, उसी को उदय काल कहते ना। एक समय में 6300 बांधे, फिर वो एक समय में बांधे हुए अलग अलग निकलेंगे। पहले समय में इतने गए, दूसरे समय में इतने गए, तीसरे समय में इतने गए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर्वधन को अन्योन्याभ्यस्त राशि में एक कम इस संख्या से भाग देने पर, अभी अन्योन्याभ्यस्त राशि हमने कितनी निकाली थी 64 माइनस 1 कितने आए 63। अब ये 6300 को 63 से डिवाइड करो तो ये 100 आए। ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य होता है। देखो हमने क्या क्या देखा, हमने स्थिति तो 48 समयों की मान ली, उसमें 8 समयों की एक गुणहानि है बराबर 8 फिर 16 24 32 40 और 48 ऐसे 1 2 3 4 5 6 गुणहानि है। तो 6 गुणहानि में मिलकर 6300 परमाणु बांधे है ना, तो वो 6 में मिलकर छूट जाएंगे। तो यहाँ कितने छूटेंगे, यहाँ कितने छूटेंगे, ये तो 8-8 समय में कितने छूटेंगे, पहले 8 समय में कितना छूटा तो हमने एकदम लास्ट का प्रमाण पहले निकाला 6300 को अन्य अभ्यस्त राशि में से कम करके उससे डिवाइड किया, 6300 को 63 से डिवाइड किया 100 आए। वो लास्ट जो 8 समय है इनमें मिलकर 100 परमाणु निकल गए सारे के मिलकर। अंतिम गुणहानि 8 समयों की है, हर एक गुणहानि इक्वल समयों की होती है, 8 समय। तो अंत में जो गुणहानि होने वाली है उसमें सब में मिलकर 100 परमाणु फिरेंगे। उसके पहले में 200 फिरेंगे, उसके पहले 400 फिरेंगे, उसके पहले 800 फिरेंगे, उसके पहले 1600 फिरेंगे और उसके पहले 3200 फिरेंगे। टोटल कितनी होगी देखो जरा, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 31, 32 फिर से बराबर इस तरह से फिरेंगे। अभी एक एक में इतने फिरते हैं परंतु एक एक समय में कितने फिरेंगे उसकी भी हमको निकालना है, उसका भी हिसाब करेंगे। पहली गुणहानि में 3200 निकलेंगे परंतु ये 8 समयों में मिलकर निकलेंगे, तो फिर वो पहले समय में कितना दूसरा, क्योंकि वो कम की होते हैं ना, ऐसे एवरेज निकालेंगे तो 3200 / 8 तो 400 एवरेज होगा, उसको मध्यधन कहते हैं एवरेज को, वो बातें अभी बताऊंगी आज। हमने देखा था कि कुल 6 गुणहानि है, नाना गुणहानि 6 है मिला, आखिर की यानी 6वीं गुणहानि में 100 परमाणु, 5वीं में उससे दुगुना यानी 200, चौथी में 400, तीसरी में 800, दूसरी में 1600 और पहली गुणहानि में 3200 परमाणु होंगे। ये बात अभी ख्याल में आई, पहली गुणहानि में 3200 परमाणु होंगे यह बात तो ख्याल में आ गई, परंतु यह गुणहानि तो 8 समयों की है और प्रति समय निषेकों में परमाणुओं की संख्या घटती जाती है। पहले निषेक में कितने परमाणु होंगे और प्रति समय कितनी घट होगी इसे हम अब देखेंगे। 8 समयों में 3200 परमाणु कहते हैं, अर्थात सरासर यानी एवरेज प्रति समय 400 परमाणु कहते हैं। 3200 / 8 400 हो गए, उसे मध्य धन कहते हैं, एवरेज को ही मध्य धन कहते हैं। 8 समयों में 8 निषेक फिरते हैं, परमाणु कितने भी हो उसको हम निषेक कहते हैं, है ना। एक समय में एक निषेक, दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा, ऐसे 8 समयों में 8 निषेक फिरेंगे तो इसको गच्छ कहते हैं। जिसमें निषेक है ना, ये 8 बार हुआ है ना, तो उसको हम कहते हैं गच्छ। अभी ये शब्द इसी भाषा में याद रखो, तो उसको गच्छे के अलावा और कुछ नहीं कहते, तो गच्छे कहेंगे उसको। अभी यहाँ के लिए प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। यहाँ जितने हो गए दूसरे में कम, फिर कम कम कम, ये जो कम थी कितना कम हुआ, कितनी घट हुई, कितना डिफरेंस है, उसको हम चय कहते हैं। देखो यहाँ लिखा, प्रति निषेक जो घट होती है उसे चय कहते हैं। चय यानी डिफरेंस, पहले में समझो 100 थे और दूसरे में 90 हो गए, तो डिफरेंस कितना हुआ 10 का, तो 10 को हम चय कहेंगे। चय का प्रमाण निकालने के लिए गच्छ बाद एक, उसको कहते हैं एक घाटी गच्छ। गच्छ कितना है हमारा 8 है, अभी 8 में से एक कम कर दो, गच्छ माइनस 1, इसको कहते एक घाटी गच्छ। इसमें पढ़ने के इसी तरह हम कहते हैं 8 माइनस 1 ऐसा लिखते ना, या बोलते वो पहले एक बताएंगे, एक घाटी गच्छ यानी गच्छ में से एक कम करो, उसको 2 से भाग देकर डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 द्वितीयांश आ गई है। जो संख्या आएगी उसे 2 गुणाने में से बाद करना। अब ये जो 7 द्वितीयांश संख्या आ गई, इसको कितने से बाद करना है, 16 में से। दो गुणाने में से बाद करना, तो ये कैसा, यहाँ भी 2 से गुणा करो और यहाँ भी 2 से, बराबर 25/2। देखो 16 में से 3.5 गए, ये सिंपल लाइन पर 16 - 7/2, तो यहाँ नीचे इसका छेद समान करने के लिए यहाँ भी नीचे भी 2 से गुणा करो ऊपर भी, यानी यहाँ 32 - 7 = 25 हो गए, तो 25/2 यानी 25 द्वितीयांश हम कहते हैं उसको, इतने आ गए। क्या क्या पहले हमने, पहले तो हमने गच्छ निकाला 8, 8 में से एक कम करो, एक घाटी गच्छ, उसको डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 7 द्वितीयांश आए, तो उसको 2 गुणाने में से माइनस कर दो। ये बातें याद नहीं रहती परंतु ये पढ़कर तो ख्याल में आए ना, यानी पुस्तक पढ़कर आपको फिर से ख्याल आए, इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। तो बिना देखे भले आप नहीं उसको याद कर सकोगे, रिपीट नहीं कर सकती, परंतु समझना मूल महत्व का। तो ये 25 द्वितीयांश कैसे आए ख्याल आया, गुणहानि आया, ये 2 गुणहानि, वैसे 2 गुणहानि जब कहेंगे तो आयाम को ही डबल कर, ये पहले आ गया था इसमें, हमने लास्ट पेज पर देखा था इसको। अब ये 12.5 हुआ, अब इस संख्या से मध्य धन को भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। अभी हमने 400 निकाला था एवरेज, अभी एवरेज को इससे भाग देना यानी 400/2 मैंने उल्टुम गुने ले, ऐसा हो जाए ना, उल्टा क्या, 25 डिवाइडेड बाय दो से इसको भाग देना है, तो कैसा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और गुणा करेंगे, इंटू टू डिवाइडेड बाय 25, 25 के 25 25 है, तो यानी 32, 32 6 आ गया, यानी हर एक दो एक एक निषेक में 32 का डिफरेंस होगा।
पहले समय के जितने परमाणु जीते हैं 3200 जी हैं, उसमें से 3200 में से जो पहला परमाणु जितने जाएंगे उसके बाद में दूसरे समय में 32 से कम हो जाएगा।
वो तो पहले की अभी संख्या निकालनी है, अभी ये बाकी तो सारा हमें पता चल गया कितना डिफरेंस है, तो 32-32 का डिफरेंस है।
डिफरेंस कुछ चाहिए
इस तरह, पहले गुणहानि में घट यानी क्षय का प्रमाण 32 है, क्षय इंटू दो गुणहानि पहले निषेध के परमाणुओं की संख्या थी, यानी 32 × 16 कितने आए, 512। दीपाली ख्याल में आता है, पहले निषेध के परमाणुओं की संख्या होगी। इसी को जानने के लिए दूसरी भी एक पद्धति है, वह इस प्रकार है, यानी ये जो 512 का जो संख्या है उसको अन्य भी मेथड से निकाल सकते हैं। सर्वधन को, सर्वधन यानी टोटल 6300 को साधिक डेढ़ गुणहानि से भाग देने पर, गुणहानि हमारी 8 की है, डेढ़ गुणहानि यानी उसको डेढ़ गुणा करो, 8 और उसका आधा उसमें मिला दो, 1.5 times मोर, तो वो 12 हो गया, तो साधिक 12 यानी 12 से कुछ अधिक, तो साधिक डेढ़ गुणहानि से भाग देने पर पहले निषेक के परमाणुओं की संख्या आती है, ये डायरेक्ट आ जाता है ये उत्तर। नियम है, ऐसा नियम ही है, तो 6300 डिवाइडेड बाय साधिक 12 इज इक्वल टू 512। अभी इसे दो गुणहानि से भाग देने पर क्षय का प्रमाण आता है, यानी 512 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 32, यह हुआ पहले गुणहानि का क्षय। देखो ये पर गुणहानि उसका क्षय भी आधा आधा होता जाएगा, पहले गुणहानि देखो हमने देखा था ना, ये पहला नीचे के 512 उसमें से 32 कम कर दो, उसमें से 32 कम दो, ऐसे करते करते 8 बार हमने किया, यानी 7 बार किया तो आधा हो गया, तो ये आधा 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 हुआ ना, यहाँ तो 512 थे, कम से कम की 32-32 कम करते करते 256 तक पहुँच गए, तो ये एक गुणहानि हो गई, ख्याल है ना। देखो तो ये सारे ही इसकी टोटल करेंगे 512 से इसमें एक कम, तो ये सारे क्या हो गए 3200 इसकी टोटल आ गई, बराबर। यह हुआ पहले गुणहानि का क्षय।
फिगर यहाँ देखिए आप, ये जो अपने पास फिगर है, इसमें जो लगभग पहली गुणहानि 8 समय से 8 महीने है, अभी इसकी टोटल है 3200 की परमाणु फिरने, तो पहले में 512, पहले समय में 512, दूसरे समय में 512 माइनस 32 इसी को 480, ऐसा करते हैं ना, उसमें 32 32 32, तब वो 8वें समय में 256 हो जाएगा, 256 ऐसा करते करते जाएंगे तो एक और रह जाएगा, जिस तरह वो हर गुणहानि में आधा आधा प्रमाण हो रखा है कभी, और वो प्रमाणों की संख्या भी कम कम होती जाएगी,
ये इस तरह से 512 480 448 416 ऐसा 32 32 32 कम करना है, एक में से और 32 गए तो यहाँ 4 हो गया 384, बराबर ना,
बराबर
नहीं 32 32 32, हाँ बराबर, इसमें से और 32 गए,
तो
अगली गुनाह नहीं कर रहा। इसमें आता है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब इन सारे को टोटल करेंगे तो 3200 आ जाएगा। अभी जो अगली गुनहानी है उसमें ये पहला निषेध भी आधा हुआ, और यहाँ जो 32-32 का डिफरेंस था वो वहाँ 16-16 का हुआ, उसी वजह से का भी आधा हुआ, क्योंकि यहाँ टोटल परमाणु है 1600। अब हमारे जो पहले हमने गणित देखा था जो सूत्र कैसे किया था, वहाँ मध्यगण निकाला था तो 1600 को 8 में डिवाइड कर तो कितने हो जाएंगे 200 एवरेज आया, उसको भी वो 25 द्वितीयांश यानी 12.5 से उसको भाग देगा तो इसका तय आ गया 16। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसमें 16-16 का डिफरेंस होगा 8 टाइम। सह का प्रमाण दूसरी गुणहानि में आधा यानी 16, तीसरी में उससे आधा यानी 8, इस तरह उत्तरोत्तर आधा आधा होता है, द्रव्य भी आधा आधा होता है यानी 3200, 1600, 1800 आदि। मैंने तुम्हें समझाने के लिए दाएं से बाएं रेखाएं खींचकर समझाया है। शास्त्र में समझाते समय हमेशा पहला समय नीचे लिखते हैं, दूसरा समय उसके ऊपर और तीसरा उसके ऊपर। निषेकों की इस रचना को त्रिकोण रचना कहते हैं और गोमट सार में उसका ऐसा चिन्ह बताया है। ऐसा है वो नीचे तो उसकी उसका आवाज आकार बताते हैं, फिर यहाँ 512, फिर वो 448, फिर ऐसे करते 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 ये आधा हो जाएगा 256, फिर उसमें से 16 कमती करते 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 उसको 128 बन जाएगा, फिर 8 कमते करते 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 ये 64 बन जाएगी। इस तरह से वो अंत तक ऐसे त्रिकोण रचना बताते हैं, ये कहते हैं निषेकों की त्रिकोण रचना। हमारे अभी के उदाहरण की दृष्टि से हम उसका विचार करते हैं। नीचे की सीधी रेखा आबादा काल दर्शाती है, इस कालावधि में एक भी परमाणु नहीं फिरता, उदय में नहीं आता, उसके पश्चात घटती हुई संख्या में परमाणु उदय में आते हैं। अभी जो हमने देखा है उसी को अभी यहाँ फिगर से समझाया, यहाँ जो लिखा है ना आबादा काल, नीचे की जो ये सिंगल लाइन है यहाँ कोई परमाणु नहीं फिरते, यहाँ कोई निषेक रचना ही नहीं है, इसलिए यहाँ इसको सीधा बताया। फिर यहाँ 512 फिरे, फिर क्रम से कमती 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 फिरे 512, 256, ये पूरे एक गुनाहानि के बाद का एक एक समय का नहीं है, 8 समयों के बाद वो 256 है, और 8 समयों के बाद 128 हुए, और 8 समयों के बाद 64 हुए, इस तरह से। इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नौ कर्म परमाणु ग्रहण करता है उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है। जब हम किसी कर्म की स्थिति बताते हैं तब अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है, परंतु प्रथम निषेक की स्थिति तो आबादा काल के एक समय अधिक होती है। यहाँ वाले निषेक किए जो 512 किए इनकी स्थिति कितनी है, आबादा काल में एक समय अधिक कर दो उतनी है उसकी स्थिति। अंतिम है वो तो हम जो टोटल भी अभी जो हमने 48 समय है वो इसकी स्थिति है, और पहले समय में फिरने वाले की स्थिति तो एक समय की होगी, वहाँ तो हमने खाली 48 समय लिया किसी को उसमें से नहीं लिया, क्योंकि वहाँ कर्म और नौ कर्म दोनों को ही समझाना था ना। इसलिए पांचवी शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। देखो इसमें क्या सिद्ध होता है, कौन से परमाणु जाएंगे और कितने नंबर में जाएंगे ये सारा निश्चित है ना, क्योंकि जब नौ कर्म ग्रहण किया, अभी शरीर की बात करें, नौ कर्म ग्रहण किया तो पहले समय में 512 निकल, 6300 लिए और उसी समय 512 निकल गए, दूसरे समय में 448। अब ये कौन से परमाणु निकलेंगे ये भी, क्योंकि हर एक परमाणु में स्थिति निश्चित है, तो कौन सा परमाणु शरीर का कब निकल जाएगा ये सारा निश्चित है ना। देखो अपनी जो मिथ्या भ्रांतियां चलती है ना कि शरीर रूप में मानकर इसी को वैसा ही रखना चाहते हैं, जैसे 20वें साल में थे वैसे 50वें साल में कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। तो अभी जब अच्छा दिख रहा है ना तभी उससे भेद ज्ञान कर लो, तो बाद में पछताने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। देखो पांचों ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। इतनी स्वतंत्रता जानते ही मैं शरीर का करता हूँ, मैं मेरी इच्छा से दुबली या मोटी होती हूँ, मैं बच्चों को खिला पिला कर मोटा करती हूँ, ऐसा अपना दुराभिमान कितना व्यर्थ है इस बात का पता चलता। हम कितने ही रोगी या मरीज देखते हैं तो लगता है ये कुछ ही घंटों के साथी है, फिर भी महीनों या सालों तक जीवित रहते हैं। इससे विपरीत कोई हट्टे कट्टे नौजवान बिना किसी वजह क्षण भर में मृत हो जाते हैं। उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है, परंतु आयु कर्म की स्थिति और शरीर की यानी नौकर्म की स्थिति पूरी होना यही सच्चा निमित्त है। उसको भी सच्चा निमित्त में डाला है, उसको कर्ता नहीं किया है, वो भी सच्चा निमित्त है यानी होने ही वाला निमित्त, अंतरंग निमित्त। और जीव की अपनी योग्यता उपादान है, तो जीव क्यों मरा? अपनी योग्यता से वो देव हुआ। अभी मनुष्य पर्याय वाला जीव था, अपनी योग्यता से देव पर्याय वाला हुआ, वो आयु तो निमित्त में गया, देव आयु वो भी चालू हो गए, मनुष्य आयु खत्म हो गई, वो तो निमित्त में डाला उसको। शरीर के परमाणु यहाँ के खिल गए, दूसरे ग्रहण किए, ये सारा निमित्त में डाला। जीव की अपनी योग्यता, क्योंकि जीव है तो उसकी भी पर्याय है ना, जीव की मनुष्य पर्याय, वो दोनों की मिलाकर वो असमान जाति पर्याय, उसकी बात नहीं चल रही है। देखो ये गोमंतार की विशेषता, वो जीव की ही मनुष्य नाम की पर्याय चल रही है। और जब हम मनुष्य शरीर के साथ वाला जीव कहते हैं तब उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु। और बिना परमाणुओं के अकेले जीव की ओर देखें तो भी उसकी मनुष्य पर्याय चल रही है, उसके भाव ऐसे है ना सारे, इसलिए वो मनुष्य पर्याय में अकेला वहां जीव को लेना। ये गोमट साल में विशेषता है, यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि वो निमित्त की भाषा में बोलते हैं। जीव की ऐसी योग्यता है, क्योंकि उपादान की ओर अगर हम देखना है तो जीव वहाँ मनुष्य रूप से था, वो अभी देव पर्याय रूप से हो गया। अब निमित्त कौन सा है? तो आयु कर्म, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हमारा जो व्यवहार है, वो सारा भाषा में होता है, और भाषा को निमित्त के अनुकूल ही भाषा होती है, क्योंकि निमित्त से ही वहाँ कार्य होता है, ऐसा जो भाषा में आता है, भाषा मात्र सारा व्यवहार है वो, क्योंकि वो निमित्त का कथन करती है। क्योंकि उपादान तो सारे ही अनंत द्रव्य अपनी उपादान से परिणमन रहे हैं, तो उसमें क्या बताना है? इसलिए कैसा किसको बताना है? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उसको बताते, परंतु वो बताए इसलिए ऐसा नहीं मानना उसके कारण हुआ। हम तो वो, हमें तो उतने भी निमित्त का ज्ञान नहीं, हम तो वो तो आयु कर्म वाले को निमित्त को मालूम ही नहीं, अनंत अनेक जीवों को तो वो तो मालूम ही नहीं, वो तो बाहर ही देखते क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, वो डॉक्टर ने दवा ठीक नहीं दी क्या हुआ, ये ऐसा हुआ क्या हुआ, वैसा हुआ। ये जो अंतरंग जो कर्मों वाला जो निमित्त है वो कोई जानता ही नहीं, इसलिए यहाँ कर्मों का ज्ञान कराया है। निमित्त से कोई भी कार्य नहीं होता, यह त्रिवार सत्य है। ज्ञान मात्र उन निमित्तों को जानता है, अज्ञानी की दोहरी भूल होती है। सच्चा निमित्त कौन है उसका भी उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान झूठा है, और निमित्त ने कार्य किया यह उसकी श्रद्धा भी झूठी है। देखो ये दोनों तरफ से, तो ज्ञानी कैसा? निमित्त को स्वीकार भी करेगा ज्ञानी, परंतु निमित्त से कार्य होता है ऐसा कभी नहीं मानेगा। वो कार्य तो उपादान से ही होता है, तब तब वहाँ निमित्त उचित हाजिर रहता है। प्रत्येक कर्म और नौ कर्म की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न निषेध रचना होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए कर्म नौ कर्म का उदय काल और निषेध रचना भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों के जिन निषेधों का उदय होगा उन सबका इकट्ठा फल हम उसे विवक्षित समय में हमें प्राप्त होगा। उसमें कभी तीव्र या कभी मंद उदय होता रहता है। कर्म का उदय कभी एक सदृश नहीं रहता, इसलिए उसे असमान कहा है। वर्तमान योग के अनेक कथाओं में तथा अपने पहचान के अनेक व्यक्तियों के जीवन में कर्मोदय के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं। पुण्य पाप का फल कर्म के उदयानुसार मिलता रहता है, इसलिए अनुकूल संयोगों से अपने को महान और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन समझना गलत है, क्योंकि जीव तो जीव है, उसके संयोग बदलने से उसका थोड़ा ही स्वरूप बदलता है। जीव तो इन दोनों ही संयोगों का मात्र ज्ञाता है। देखो मैंने पूर्व में पुण्य किया था इसलिए मैं अभी कितना सुखी हूँ, ऐसा जो मानता है। देखो क्या, मैं तो सुखी हूँ क्यों, अरे मैंने पूर्व में पुण्य किया, मैंने उसको अच्छा मान रहे ना, मैं पुण्य करता रहूं और मुझे अच्छे संयोग मिलते रहे, ऐसा जो मानता है वह पुण्य करने लायक है, बंध करने योग्य है, ऐसा मानता है। यह उसकी बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, और जिसकी एक तत्व संबंधी भूल है उसके अभिप्राय में सातों तत्व संबंधी भूल है। ये हमने पहले देखा था ना, वो जैन तत्व परिचय वाले पुस्तक में वो बंध तत्व की भूल में ये सारा देखा था। जीव ने शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संचय किया हो तो वह उसी रूप में उदय में आएगा, इस भरोसे मत रहना। अभी तक तो हमने मात्र बंध उदय सत्ता इन तीन अवस्थाओं का ही ज्ञान किया है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उथल पुथल हो जाती है। जैसे किसी ने लाखों रुपए दान देकर मंदिर बनवाया हो, कुछ साल बाद उसे गरीबी आई, तब यदि वह सोचेगा अरे अरे मैंने व्यर्थ ही इतना पैसा बर्बाद किया, आज मेरे पास इतना धन होता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, इस प्रकार के या अन्य अशुभ भाव करने से पूर्वकृत पुण्य कर्म पाप रूप में परिवर्तित हो सकता है, उसे संक्रमण कहते हैं। कर्मों की ऐसी 10 अवस्थाओं का वर्णन शास्त्र में आता है, वे अवस्थाएं इस प्रकार है। ये तो आपने याद किए ही थे वो गुणस्थान के समय, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदस्ती और निकास। दीपाली इसे जरा याद करना, 2-3 दिन अभी 8 दिन के अंदर इसके याद करना। ये 10 नाम याद कर लेना आसान है, छोटे छोटे बहुत से बालकों ने इसे याद करके हमें सुनाया। कर्मों के विविध नामों से घबराने की कोई बात नहीं है, कर्म की अवस्थाएं केवल जीवों के परिणामों के प्रतिबिंब है या थर्मामीटर है। जीवों के परिणामों की विचित्रता का ख्याल इन्हें देखने से आता है। जैसे किसी एक ग्रुप फोटो में किसी की आंखें बंद है, किसी का मुंह खुला है, तो किसी का नाक और भौहें चढ़ी हुई है। फोटो तो मात्र कागज और रंगों की अवस्था है, फिर भी फोटो खींचते समय उस व्यक्ति ने अपना चेहरा कैसा रखा था, इस बात का वो फोटो द्योतक है, बताने वाला है। वैसे अभी हमारे जो कर्म का उदय है वो क्या बताता है, जब वो बांधे थे तब हमने क्या परिणाम किए थे, उसको बताने वाले। उसी तरह कर्म की विविध अवस्थाएं जीव के परिणामों की द्योतक है। देखो तो एक समय में जीव मोह राग द्वेष करता है, उससे क्या क्या बातें होती है। एक तो जीव उसी समय दुखी होता है, क्योंकि मोह राग द्वेष यही दुख है ना, और कोई दुख नहीं थी, क्योंकि मोह राग द्वेष यही दुख का कारण है। दूसरा उन परिणामों के निमित्त से आठों ही कर्म बनते हैं जो भविष्य में उदय में आकर पुनः जीव को विशिष्ट फल देते हैं। तीसरी बात, उन परिणामों का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए पूर्व में बंधे हुए पुराने कर्मों में भी फेरफार होता रहता है। कर्म के उदय की तरफ देखते रहने से जीव को मोह राग द्वेष होते ही रहेंगे और नित्य नए कर्म बनते रहेंगे। यदि जीव अपना स्वरूप जिनेन्द्र कथित आगमन द्वारा जानकर, ये कंडीशन है, अपना स्वरूप जानना ये पड़ेगा, कैसे जैसे जिनेन्द्र भगवान ने बताया, वो जानकर कर्मों के उदय में न जुड़कर अपने स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित करेगा, उसी का विचार चिंतन मनन और अनुभव करेगा तो उसका मिथ्यात्व नष्ट होगा, राग द्वेष का आंशिक अभाव होगा, उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। भेद ज्ञान और आत्मस्थिरता करते करते यह जीव वितराग होगा, पश्चात सर्वज्ञ होगा। पहले 12वें गुणस्थान में वितराग होगा और 13वें में सर्वज्ञ होगा। उसके बाद शेष कर्म भी खिर जाएंगे, क्षय होगा। नौ कर्म भी अपनी स्थिति पूर्ण करके खिर जाएगा और जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित पूर्ण शुद्ध स्वरूप में प्रकट होगा, यही शुद्ध अवस्था है। मैं भी स्वभाव से ऐसा शुद्धात्मा हूँ और पर्याय में भी अल्पकाल में ही सिद्ध बनूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हम रखेंगे, हम अवश्य यशस्वी होंगे। जावाणी के जानते तुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो तुम्हारे तो।